आरव आयु को छोड़कर माहिरा के साथ जा चुका था। इस बात से आयु बहुत परेशान थी। वो सबको बिना बताए आरव के प्राइवेट सूट में बैठी थी। उसे ढूंढते हुए आर्या वहां पहुंचा। आयु के समझाने के बावजूद आर्या ने आयु का साथ देने के लिए चंडीगढ़ में रुक रहा था। आयु खुश थी कि आरव ना सही, उसका बेटा उसका साथ है। आर्या आर्या से अलग हुआ और बोला, ठीक है अब घर चलते हैं, क्योंकि खुराना फैमिली आपको लेकर परेशान हो रही है। मैं उनके घर पर गया तो पता चला कि वो आपको ढूंढने के लिए निकले हैं। उन्हें पता चल चुका है डैड उन्हें छोड़कर चले गए, फिर भी ऐसी सिचुएशन में वो आपकी केयर कर रहे हैं। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर आर्या के साथ घर आई। उसने कॉल करके खुराना फैमिली को घर बुलाया। आयु को देखते ही उन सबकी जान में जान आई। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। आयु के बाल भी हल्के बिखरे हुए थे। प्रिया उसे देखते ही गले लग गई। वो रोते हुए बोली, वो हमें छोड़कर चला गया, पर तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता है? उसने अच्छा नहीं किया हम सबके साथ। आर्या की नज़रें झुकी हुई थीं। वो आयु के सामने आए और हाथ जोड़कर बोले, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से ये सब हो गया। तुम दोनों ने एक दूसरे को पाने के लिए इतना स्ट्रगल किया, बहुत कुछ सहा, लेकिन मेरी वजह से वो उसे फिर से अपने साथ ले गई। कहीं ना कहीं युवराज खुद को इन सब का जिम्मेदार मान रहा था। आयु ने उनसे कहा, प्लीज़ आप गिल्ट में मत रहिए, ये फैसला मेरा और आरव दोनों का था। वो वापस आएगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें पूरी तरह छोड़कर नहीं गया है। हम उसका दिल से इंतज़ार करते हैं ना? युवराज ने उसकी बात पर हामी भरी। फिर उसने आर्या की तरफ देखा, जो कुछ हद तक आरव की तरह लग रहा था तो कुछ हद तक आयु की तरह। आयु ने उनकी नज़रों को फॉलो करते हुए आर्या को देखा और फिर बताया, ये मेरा और आरव का बेटा है, पिछले जन्म में मैंने इसे जन्म दिया था। आर्या हमारे साथ रहना चाहता है डैड, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं बेटा, हमें क्या प्रॉब्लम होगी, उल्टा इसे देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि हमारा आरव हमारे पास ही है, इसकी आंखें बिल्कुल उसकी तरह लगती हैं। किस्मत देखो, हमारे बेटे ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारा बेटा आज भी तुम्हारे साथ खड़ा है। युवराज ने कहा, ना तो आपका बेटा मुझे कभी अकेला छोड़ेगा और ना ही मेरा बेटा मुझे अकेला छोड़ने वाला है। आप प्लीज़ आरव को ब्लेम मत कीजिए, आयु ने उनको हक करते हुए कहा। इस वक्त उन्हें किसी के सहारे की सख्त ज़रूरत थी। जैसा कि आरव ने उसे कहा था, आयु उन्हें छोड़कर नहीं गई और उन्हीं के साथ रहने का फ़ैसला लिया। दूसरी तरफ आरव माहिरा के साथ दुबई पहुंच चुका था। वो उसे लूथरा मैंशन में लेकर आई थी। इतने सालों में कुछ नहीं बदला था, सब कुछ वैसा ही था। लूथरा मैंशन को वक्त के साथ अपडेट करवाया जा चुका था। मुझे पता है तुम मेरे रूम में नहीं रहोगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अलग कमरा तैयार करवा दिया है, जाकर रेस्ट कर लो, मेरी एनी टाइम तुम पर नज़र रहेगी, तो कुछ भी ऐसा वैसा करने का ख्याल भी अपने दिल में मत लेकर आना। वहाँ चंडीगढ़ में भी मैंने अपने आदमियों को छोड़ा है, तुमने कुछ किया तो सज़ा तुम्हारी फैमिली और ख़ासकर तुम्हारी पत्नी को भुगतान पड़ेगी। माहिरा ने आते ही उसे फिर से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरव ने माहिरा की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी यही हरकतें हैं तो वापस चला जाता हूँ, मैंने कहा था मेरी फैमिली को तुम अकेला छोड़ दोगी, चुपचाप अपने आदमियों को वापस बुलाओ, वरना मुझे एक सेकंड नहीं लगेगी यहाँ से वापस जाने में, फिर पीछे से जो चाहे करती रहना, और तुम्हें पता है मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। माहिरा ने उसकी बात पर हामी भरी और तुरंत अपने आदमियों को खुराना मैंशन के आसपास से हटा दिया था। माहिरा के कॉल कट करते ही आरव बोला, यकीन के लायक तो तुम भी नहीं हो, फिर भी तुम्हारे साथ आया हूँ, मैंने यकीन किया है तो तुम्हें भी मुझ पर भरोसा करना होगा। आरव ने इतना ही कहा और ऊपर जाने लगा। उसे आयु की बहुत बुरी तरह से याद आ रही थी। वो मन ही मन बोला, हर तरीके से जीतना है मुझे तुम्हें माहिरा लूथरा, और फिर ऐसी मौत दूंगा जो तुमने कभी हमें दी थी। मुझे पता है मिसेस खुराना को आर्या संभाल लेगा, तुमने मुझे यहाँ लाकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, वक्त रहते तुम्हें ये समझ भी आ जाएगा। लगभग 5 साल बाद, दुबई, UAE। लूथरा मैंशन में सुबह सुबह काफ़ी शांति का माहौल था। माहिरा उठ चुकी थी और जिम के अंदर थी। वो ट्रेडमिल पर चल रही थी और किसी के साथ कॉल पर कनेक्ट थी। माहिरा के चेहरे पर गुस्से के भाव थे और वो कॉल पर बोली, कबीर अब तक आरव उठा क्यों नहीं है? मुझे कितनी बार समझाना होगा उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? उसे बोलो रेडी होकर नीचे आए, थोड़ी देर बाद में मीटिंग शुरू होनी है। आरव ने कबीर को अपने पास बुला लिया था। माहिरा इस मैटर में कुछ नहीं कर सकती थी। आरव अभी भी कबीर के काम संभालता था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, आप जानती तो हैं उन्हें जल्दी उठना पसंद नहीं है। मैं उसे यहाँ अपने लिए लेकर आई थी, लेकिन वो कुछ और ही कर रहा है। देर रात तक पार्टी करने की क्या जरूरत होती है, वो भी रोज रोज। वो रोज एक नई लड़की के साथ दिखता है। क्या किसी लड़की के साथ सोया था वो? माहिरा ने सीधे सीधे पूछा। आरव का लाइफस्टाइल यही हो गया था, दिन में काम करना और रात को देर रात तक पार्टी करना। अर्ली मॉर्निंग वो घर पर आता था और सोने चले जाता था। आरव लगभग 11 बजे के आसपास से उठता था। माहिरा को उसके इस लाइफस्टाइल से काफी प्रॉब्लम थी, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। आरव ने उसका काम काफी हद तक संभाल रखा था। कबीर ने गहरी सांस ली और जवाब में कहा, आप जानती हैं कि वो चीटिंग में यकीन नहीं करते हैं। हाँ, बस इसी भरोसे पर मैं उसे कुछ नहीं कहती। उम्मीद है वो मुझे चीट नहीं करेगा, माहिरा बोली और गुस्से में कॉल कट कर दिया। उसके कॉल कट करते ही कबीर ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वो अपनी वाइफ को कभी चीट नहीं करेंगे। इतने सालों से आरव आयु से अलग जरूर था, लेकिन अभी भी वो उसके दिल की धड़कन में बसती थी। कबीर आरव को जगाने के लिए जा रहा था। पिछले 5 सालों में आयु कहाँ थी या क्या कर रही थी, इस बारे में वो पूरी तरह बेखबर थे। कबीर ने आरव को आयु की न्यूज़ देनी चाही, लेकिन वो आयु की कोई खबर लेना भी नहीं चाहता था। अगर वो उसके बारे में जानता या उसके बारे में बात करता, तो फिर आरव आयु के बिना रह नहीं पाता। आरव जगाने के लिए कबीर ने आरव के कमरे के आगे आकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो कबीर ने सीधे ही दरवाजा खोल लिया था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। कबीर के अंदर कदम रखते ही आरव ने बंद आंखों से कहा, अभी सिर्फ 8 बजे हैं और मेरे उठने का टाइम नहीं हुआ है, फिर तुम इतनी जल्दी मेरे रूम में कैसे आ सकते हो? आपको नींद नहीं आ रही है तो फिर टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा हुआ? आप तो ऐसे नहीं थे, कबीर ने हैरानी से पूछा। ये मेरा टाइम है कबीर, मैं इसमें सोऊं रोऊं या फिर कुछ भी करूं, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अब बाहर जाओ, मैं 11 बजे से पहले इस कमरे से बाहर कदम नहीं रखूंगा, आरव ने जवाब दिया और एक तकिया उठाकर कबीर की तरफ फेंक दिया था। कबीर ने गहरी सांस ली और बाहर जाने से पहले कहा, थोड़ी देर बाद में आपकी मीटिंग है, माहिरा ने मुझे आपको जगाने के लिए कहा था। कहा ना, जब तक मेरा टाइम नहीं होगा मैं बाहर कदम नहीं रखूंगा, जाकर बोल दो उसे, आरव ने उसी बेपरवाही से जवाब दिया। कबीर ने आगे बहस नहीं की और वो बाहर चला गया था। कबीर के जाते ही आरव ने खुद को ब्लैंकेट में लपेट लिया था। आरव अपनी जिद का पक्का था, अगर उसे 11 बाहर निकलना था तो वो उसी टाइम पर बाहर आने वाला था।
आरव से बात करने के बाद कबीर नीचे पहुंचा तो माहिरा जिम करके आ चुकी थी। कबीर को अकेला देखकर वो उस पर गुस्से में बिभरते हुए बोली, तुम अकेले क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें आरव को साथ लाने के लिए भेजा था। मीटिंग जरूरी नहीं होती तो मैं उसकी नींद में खलल नहीं डालती। आप अच्छे से जानती हैं वो कितने जिद्दी हैं, उन्होंने मेरे लिए दरवाजा तक नहीं खोला। मीटिंग में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, कबीर ने जवाब दिया। वो नहीं चाहता था कि माहिरा आरव के पास जाकर उसे डिस्टर्ब करे। माहिरा ने कबीर की तरफ घूर कर देखा और बोली, यकीन करने के लायक तो नहीं हो तुम, लेकिन आरव की वजह से तुम्हें झेलना पड़ रहा है। फाइल्स मेरे रूम में स्टडी पर रखी हुई हैं, उन्हें लेकर गाड़ी में पहुंचो। तुम्हारी जरूरत नहीं होती तो तुम्हें लेकर कभी नहीं जाती। कबीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर सीधा फाइल लाने के लिए चला गया। माहिरा ने लगभग सारे घर में CCTV इंस्टॉल कर रखे थे, बस कुछ खास जगह पर कैमराज नहीं थे। जैसे आरव के कमरे के आसपास और उसके रूम के अंदर, वैसे ही माहिरा के कमरे के आसपास भी कोई कैमरा नहीं था। कबीर जल्दी से कमरे के अंदर गया और फाइल्स को देखने लगा। उन्हें देखते हुए वो मन ही मन बोला, अच्छा तो इसका स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आरव सर के हाथ खींचने की वजह से लटक गया है। 5 साल बाद वापस प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। अब किसको जाल में फंसाकर आगे बढ़ने की फिराक में है ये? कबीर के पास ज्यादा टाइम नहीं था। आज की मीटिंग अटेंड करनी कितनी जरूरी थी अब ये उसे समझ आ रहा था। कबीर ने जल्दी से फाइल्स को लिया और फिर माहिरा के पीछे जाने लगा।